آپ ہیں ایس بی ایس ہندی کے ساتھ اور خبروں کے لیے جائیں sbs.com.au/hindi پر۔ के मुख्य समाचार में, ऑस्ट्रेलिया में पहले स्थानीय रूप से प्रसारित ओमिक्रॉन मामले की पुष्टि, फेडरल विपक्ष ने अपनी जलवायु नीति के विवरण का किया खुलासा और भारत में कर्नाटका में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के दो मामले आए सामने। अब समाचार विस्तार से। नॉर्दर्न टेरिटरी में एक स्वदेशी बुजुर्ग कोविड 19 से मरने वाली राज्य की पहली व्यक्ति बन गई हैं। 70 साल की उम्र के आसपास की महिला कैथरीन के बाहरी इलाके में बिंजारी आदिवासी समुदाय से थीं और उनका टीकाकरण नहीं हुआ था। नॉर्दर्न टेरिटरी ने कोरोना वायरस के दो नए मामले भी दर्ज किए हैं। दोनों मामले अंतर्राज्यीय यात्रियों के थे, जिसके कारण इस क्षेत्र ने साउथ ऑस्ट्रेलिया के साथ अपनी सीमा प्रतिबंध बढ़ा दिए हैं। मुख्यमंत्री माइकल गर्नर ने मृत्यु पर खेद जताते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि उन्हें कभी भी इस तरह की बुरी खबर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
This is a period of great sorrow for a family and for an entire community. I know the media and others will afford them the privacy and respect they deserve. And we all grieve with them today. All Territorians grieve with them today.
वर्तमान में नॉर्दर्न टेरिटरी में प्रकोप से संक्रमित मामलों की कुल संख्या अब 60 हो गई है। नॉर्दर्न टेरिटरी के स्वास्थ्य अधिकारियों ने पुष्टि की है कि प्रकोप अब तीसरे आदिवासी समुदाय में फैल गया है, जिनमें लाजामानू के साथ रॉबिन्सन रिवर और बिंजारी भी शामिल हैं। माना जा रहा है कि यह प्रकोप तब शुरू हुआ जब एक संक्रमित 21 वर्षीय महिला ने कथित तौर पर विक्टोरिया और क्वींसलैंड की यात्रा के बाद अवैध रूप से नॉर्दर्न टेरिटरी में प्रवेश किया। पुलिस आयुक्त जेमी चौकर ने पुष्टि की है कि पुलिस की जांच अभी जारी है।
Unfortunately, this death does apparently have links to a breach of Chief Health Officer directions. It appeared to be the seed that started the spread of COVID within the Northern Territory, and as such, major crime and now undertaking an investigation.
उधर न्यू साउथ वेल्स के अधिकारियों का कहना है कि नवीनतम ओमिक्रॉन संक्रमण से जिस व्यक्ति का सकारात्मक परीक्षण हुआ था, वो देश में इस वेरिएंट के सामुदायिक प्रसारण का पहला मामला हो सकता है। अब तक के बाकी ओमिक्रॉन संबंधित मामले साउथ अफ्रीका से विदेशी आगमन में पाए गए हैं। न्यू साउथ वेल्स हेल्थ ने कहा है कि राज्य में अब नए संस्करण के 9 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें से पश्चिमी सिडनी के रीजेंस पार्क क्रिश्चियन स्कूल का एक छात्र भी है, जिसका विदेश यात्रा या हाल ही में विदेशों में रहने वाले लोगों से कोई संबंध नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री ब्रैड हैज़र्ड का कहना है कि कुल संख्या ज्यादा नहीं है।
I think transmission is always a concern, but we also again need to just keep it in perspective at the moment that worldwide there's not a clarity around whether or not this particular variant is going to cause us anywhere near the problems that the earlier variants caused us. We're well placed if it does increase, but at the moment it's very early days. So I think my advice to the community is be cautious just the way you always have been. But don't anticipate necessarily a rapid growth, but let's just go cautiously.
पिछले 24 घंटों में राज्य ने 337 स्थानीय कोविड-19 मामले दर्ज किए और कोई भी मौत नहीं हुई है। राष्ट्रीय विशेषज्ञ वैक्सीन समूह का कहना है कि उसने बूस्टर शॉट्स पर अपनी सलाह में कोई बदलाव लाने का फैसला नहीं किया है। फेडरल सरकार ने समूह से अनुरोध किया था कि ओमिक्रॉन संस्करण की वजह से दूसरे कोविड-19 वैक्सीन शॉट और बूस्टर के बीच का समय 3 महीने तक आधा कर दिया जाना चाहिए। समूह का कहना है कि फिलहाल इस बात का कोई सबूत नहीं है कि पहले के बूस्टर शॉट से ओमिक्रॉन के खिलाफ सुरक्षा बढ़ेगी, लेकिन एहतियात के तौर पर वे डाटा पर निगरानी रखना जारी रखेंगे। उधर अमेरिका ने कोविड 19 के ओमिक्रॉन संस्करण के अपने पहले मामले दर्ज किए हैं। न्यूयॉर्क राज्य में कम से कम 5 मामलों का पता चला है। इनमें से एक व्यक्ति नवंबर के अंत में मैनहट्टन में एक एनिमे सम्मेलन में शामिल हुआ था। कोलोराडो में एक मामला सामने आया है। यह मामला एक महिला का है जो हाल ही में साउथ अफ्रीका की यात्रा से लौटी थी। न्यूयॉर्क के गवर्नर कैथी होकुल का कहना है कि उन्हें लगता है कि और मामले सामने आएंगे, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है।
While this may be highly transmissible, at least from the early evidence, and again, more information is still forthcoming, we want people to know that the early cases that have arisen are not life-threatening. They seem to be minor cases, and that is a source of good news for us right now. But in terms of the information we received, literally there are 5 cases identified today in the state of New York.
ऑस्ट्रेलिया में फेडरल विपक्ष ने अपनी जलवायु नीति के विवरण का खुलासा करते हुए कहा है कि इससे नौकरियां पैदा होंगी, बिजली बिलों में कटौती होगी, नवकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा दिया जाएगा और उत्सर्जन को कम किया जाएगा। जलवायु नीति में 2030 तक ऑस्ट्रेलिया के ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 43% की कटौती करने की योजना की घोषणा की गई है। इसके अलावा राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक वाहन और सामुदायिक सौर और बैटरी नीतियां और सरकार के सुरक्षा उपायों में बदलाव भी शामिल हैं। लेबर का कहना है कि योजना से 2030 तक 6,40,000 नौकरियां दी जाएंगी, जिसमें 6 में से 5 नौकरियां क्षेत्रीय ऑस्ट्रेलिया को जाएंगी और क्षेत्रों को जीवाश्म ईंधन से दूर संक्रमण में मदद करने के लिए एक फंड की स्थापना भी की जाएगी। लेबर लीडर एंथनी एल्बनीसी का कहना है कि इस पर 683 मिलियन डॉलर खर्च होने का अनुमान है।
This government has had over 20 attempts at an energy policy without landing one. This policy is the one Labor will take to the election and the one policy we will implement in government. In Glasgow, Scott Morrison gave an empty speech to an empty room with empty promises and no plan. This is a government that's frozen in time while the world warms around it.
लेकिन प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन का कहना है कि उन्हें विश्वास नहीं है कि लेबर की योजना देश के लिए सही नीति है।
We're on our way to net zero by 2050. We're not on our way to drive people out of their jobs and force up their electricity prices. Labor's learned nothing since the last election. They've learned nothing. That's what today's announcement show. And you know, when oppositions don't learn in opposition, that doesn't mean they're safe. They're just as dangerous as they've always been.
ऑस्ट्रेलिया में सामान्य चिकित्सक यानी जनरल प्रैक्टिशनर्स रिपोर्ट कर रहे हैं कि कोविड 19 टीकाकरण से छूट मांगने वाले रोगियों द्वारा किए गए दुर्व्यवहार की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। ऑस्ट्रेलियाई तकनीकी सलाहकार समूह ATAG के विस्तारित मार्गदर्शन के तहत पात्र नहीं होने के बावजूद भी कुछ एंटी वैक्स समूह के सदस्य कोविड टीकाकरण से छूट का आग्रह कर रहे हैं। रिपोर्ट में डॉक्टरों का कहना है कि कुछ लोगों ने परामर्श के दौरान डराने धमकाने वाली भाषा का उपयोग किया है और आक्रमण करने की धमकी तक दी है। कुछ GP सामान्य चिकित्सकों ने कहा है कि उनके परिवार के साथ साथ उनकी शारीरिक सुरक्षा को भी खतरा है। द रॉयल ऑस्ट्रेलियन कॉलेज ऑफ जनरल प्रैक्टिशनर्स विक्टोरिया की अध्यक्ष डॉक्टर अनीता मुनियोस का कहना है कि यह मामला बेहद चिंताजनक है।
So it is a minority that continue to refuse to participate. And that is the choice of the individual, absolutely. If a person doesn't want to be vaccinated, they can make that choice for themselves. But it is entirely inappropriate and unrealistic to expect a general practitioner to create a fraudulent document to support somebody in exercising their choice not to vaccinate.
उधर भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी है कि कर्नाटका में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के 2 मामले पाए गए हैं। संक्रमितों में एक की उम्र 66 साल है और वह साउथ अफ्रीका के नागरिक हैं। दूसरे बेंगलुरु के 46 साल के डॉक्टर हैं। दोनों की पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद जीनोमिक सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए सैंपल में ओमिक्रॉन मिला है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि साउथ अफ्रीका से जितने यात्री कर्नाटक पहुंचे, सरकार उन सभी पर करीब से नजर रखे हुए है। उनके प्राथमिक और माध्यमिक संपर्कों को भी ट्रैक किया जा रहा है। अधिकारियों द्वारा साझा की गई सूची के अनुसार भारत में रिपोर्ट किए गए 2 मामलों सहित 30 देशों में अब कम से कम 375 मामलों में ओमिक्रॉन संस्करण का पता चला है। माना जा रहा है कि भारत के साउथ अफ्रीका दौरे पर भी कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का असर पड़ सकता है। बीसीसीआई क्रिकेट साउथ अफ्रीका सीएसए से भारत दौरे को 1 हफ्ते के लिए टालने का अनुरोध करने के लिए योजना बना रही है। खबर ये है कि भारतीय बोर्ड जल्दी ही सीएसए के साथ श्रृंखला के लिए उपयुक्त वैकल्पिक कार्यक्रम पर चर्चा करने वाला है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत में पिछले 24 घंटों में 9,765 नए कोविड-19 मामले आए हैं और 477 मौतें दर्ज हुई हैं। मुद्रा दर की जानकारी में आज के दिन अमेरिका में 1 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की कीमत 71 सेंट्स है और भारत में 1 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की कीमत 53 रुपये और 8 पैसे है। अब कल के मौसम का पूर्वानुमान। पर्थ में धूप बनी रहेगी, यहाँ का न्यूनतम तापमान 16 और अधिकतम 33 डिग्री रहने की संभावना। एडलेड में आंशिक बादल रहने की संभावना, न्यूनतम तापमान 11, अधिकतम तापमान 24 डिग्री। मेलबर्न में भी आंशिक बादल रहेंगे, न्यूनतम 11 और अधिकतम 18 डिग्री। कैनबरा बारिश होने की आशंका और न्यूनतम तापमान 13 और अधिकतम तापमान 26 डिग्री। सिडनी में 1 या 2 बौछार पड़ने की आशंका, न्यूनतम 17 और अधिकतम 23 डिग्री। ब्रिस्बेन में ज्यादातर धूप खिली रहेगी, वहां का न्यूनतम तापमान 21 और अधिकतम 27 डिग्री। डार्विन बौछार के साथ तूफान की संभावना, न्यूनतम 27 और अधिकतम 35 डिग्री। उधर भारत की राजधानी नई दिल्ली में कल धूप रहेगी, न्यूनतम तापमान 14 और अधिकतम तापमान होगा 26 डिग्री। इसके साथ ही आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। धन्यवाद।
लाइक करें, शेयर करें या कमेंट करें। SBS हिंदी को फेसबुक पर फॉलो करें।